नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं अश्मिता बोल रही हूँ। कल्पना सागर में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी का जिक्र करेंगे जो पूरी तरह कल्पना से भरी हुई है। इस कहानी में हम देखेंगे प्रकृति और मनुष्य के बीच एक वार्तालाप, एक बातचीत का सामंजस्य। तो चलिए हम अपनी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। तन्हाई का ये मंजर आखिर कबूल कौन करता है? मगर सिर्फ मेरा ये दिल ही है जो बार बार शोर मचाता रहता है। आज भी हमेशा की तरह ये अस्त होता सूरज मेरी खिड़की से झांक रहा है, मानो कह रहा हो देखो इस क्षितिज पर, देखो क्या अब भी तुम चांदनी को ही खूबसूरत कहोगी। मैं उस प्रकृति को अपने सामने जीवंत करके उसी के लहजे में उससे जवाब और सवाल करने लगी। मैंने कहा, हाँ, चांदनी ज़्यादा खूबसूरत है, शीतल है, रोमांच से भरी हुई है, पानी में उतर जाए तो मोती बन जाती है, प्रेमी के साथ हो तो अलंकार बन जाती है, और हमेशा की तरह अगर तन्हा हूँ तो लाखों सितारे खड़ी कर देती है, और अपना एक प्यारा सितारा तोड़कर मेरे आंचल में डाल देती है और बड़े प्रेम से कहती है, ये लो कुछ भी मांग लेना। इतना कहकर मेरे वीरान पड़े, बेचैन पड़े मन में आशा और हर्ष का संचार करती है। मेरे बेचैन और वीरान पड़े मन को आशा और हर्ष से सींच देती है। इसके पहले मैं और ज़्यादा तर्क वितर्क करती, अंधेरे ने दस्तक दे दी थी और दूसरी शाम उस अस्त हुए सूरज का क्षितिज पर इंतज़ार करते करते एक घड़ी बीत गई, मगर बादलों के झुंड ने तो उसे आज़ाद ही नहीं किया। और इधर पूर्णिमा आने में अभी एक हफ्ते शेष बचे थे और तन्हाई का ये मंजर अपनी चरम सीमा पर था, और ये दिल था जो बार बार शोर मचा रहा था। अगली शाम मैं अस्त सूरज के पहले ही खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई और उसे ये बताने लगी कि कैसे मैंने उन घड़ियों को बिताया जब वो बादलों का बंदी हुआ था, जब बादलों ने उसे कुछ इस तरह कैद कर लिया था कि वो अंधेरे में ही विलुप्त हो गया, और दूसरी तरफ वो अंधेरी रात। मगर ये सब कबूल कौन करता? उसने फिर से वही सवाल किया। उसने पूछा, क्या अब भी चांदनी खूबसूरत है? मैंने हाथ में लिया चाय का प्याला, वहीं खिड़की पर रख दिया। हवाएं बालों को स्पर्श करके अपनी ममता लुटाते हुए एक मानवीय सा व्यवहार कर रही थी मेरे साथ, और भावनाओं की बारिश में मेरे मन का घड़ा भरना शुरू हो गया। मुझे याद आया कि कैसे पहली बार तुम मुझे देखकर थोड़ा थोड़ा करके मुस्कुरा दिए थे, और मैं तो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए तुम्हें कुछ इस अंदाज में नज़रअंदाज किया था। मैंने तो परिवार का पूरा गुस्सा तुम पर निकालने की भरपूर कोशिश की थी, मगर तुम हर बार मुझे अपने बातों के माया जाल में फंसा लेते थे। और शादी के बाद कैसे तुम मुझे मनाने के लिए घर की छत पर पूर्णिमा की रात में ले जाया करते थे, और मैं क्षण भर में उस चांदनी की शीतलता में पिघल जाया करती थी। मगर ये चांदनी भी तो बंधक है मेरी तरह, उस समय की जो भोर के रूप में आता है और उसे हरा कर चला जाता है, जिससे इस दुनिया में सभी हार जाते हैं। मेरे जीवन से भी वो चांदनी कुछ रुष्ट होने लगी थी। तुम तो हमेशा शतरंज की बिसात पर सिर्फ अपनी ही रानी से हारना चाहते थे, मगर क्यों? क्यों तुम ना तो जीत में रहे और ना हार में रहे, क्यों तुम क्षितिज पर एक शाम की तरह बनकर रह गए, उस अस्त सूरज की भांति जो कभी बादलों का कैदी हो जाता तो कभी बादल खुद ही उसे आज़ाद कर दिया करते। अगली शाम फिर उस अस्त सूरज ने मुझसे सवाल किया और मेरी चुप्पी देखकर मुझे इन चार दीवारियों से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का सुझाव दिया। मैं बाहर निकली, उस बेंच पर जाकर बैठ गई और अतीत का एक पन्ना खुलकर मेरे सामने आ गया। जैसे ही वो पन्ना खुला, मेरे हजारों जख्मों को हरा कर दिया। मुझे याद आ गया कि कैसे एक विस्फोट ने तुम्हें यूं कैद कर लिया कि तुम हमेशा के लिए अस्त हो गए मेरी नजरों के सामने। कितनी ज्यादा पीड़ा हुई मुझे तुम्हें जीवन से यूं आजाद होता देखकर। इस मानसिक पीड़ा ने मुझे भीतर तक खोखला कर डाला था। मेरे पास जीने की कोई तो वजह छोड़ जाते तुम। यूं यादों के सहारे भी कोई जीता है क्या? और इन्हीं चुभती हुई यादों के साथ ही शाम भी गुजर चुकी थी। अगली शाम आई, उसने खिड़की पर दस्तक दी। दस्तक के साथ ही मैंने उसके सवाल से पहले ही अपना जवाब शुरू कर दिया। मैंने उस खूबसूरत लाल अस्त सूरज को बताया कि कैसे इस धमाकेदार शाम से वो खूबसूरत चांदनी बेहतर है। भले ही वो इंतज़ार करवाती है, मगर उसकी महकती यादों ने मुझे जीवित रखा हुआ है। और कैसे ये तुम्हारी खूबसूरत शाम मुझे चुभती है। मगर मैं शुक्रिया करती हूँ तुम्हारा, तुम साथी हो मेरे तन्हाइयों के। मुझे पता है कि कैसे दिन भर की तपन के बाद शाम के कुछ पल सुकून से भरे होते हैं। भारी दुख के बाद खुशी का वो एहसास हो तुम। इसके बाद जाने से पहले वो अस्त होता हुआ सूरज मुझे देखकर थोड़ा थोड़ा करके पूरा मुस्कुरा दिया। मुझे लगा मानो वो तुम ही थे जो मुझे पहली बार देखकर थोड़ा थोड़ा करके पूरा मुस्कुरा दिए थे। तो कुछ इस तरह से अंत होता है इस कहानी का। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम फिर से मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका दिन बहुत शुभ हो।